तीसरा प्रश्न, आप और सभी संत यही कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाने पर व्यक्ति को परमात्मा को नजदीक जाने में सरलता होती, लेकिन मन से मुक्त होना असंभव सा लगता है, हमें पता भी नहीं चलता और मन बार बार कई तरह की वासनाओं में भटकने लगता है और बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है कि फिर मन कल्पनाओं में बहने लगता है, कृपा करके इसे समझाएं। पहली तो बात, ऐसा भूल के भी मत कहना कि आप और सभी संत यही कहते हैं। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मैं तुमसे ये कह ही नहीं रहा हूं कि तुम वासनाओं को छोड़ के उनके ऊपर उठ जाओ, मैं तुमसे यह कह रहा हूं, बिल्कुल ही उल्टी बात कह रहा हूं कि वासनाओं को भोग लो तो ही उनसे उठ सकोगे, नहीं तो वासनाएं उठती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। मेरा जीवन पर परम भरोसा है, ये जीवन जैसा है इसमें से कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है, इसमें सब अनुभव करने जैसा है, इसके अनुभव से ही गति होती है। अब अगर तुम बैठ गए ध्यान की चेष्टा करने लगे और वासनाएं अतृप्त पड़ी और मन हजार हजार वासनाओं को भोगने के लिए आतुर है, तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे मन वासनाएं उठाएगा, मन ऐसे ही थोड़ी वासनाएं उठाता है, मन ये कह रहा है कहां समय खराब कर रहे हो, अभी तो ये दिन थोड़ा सुख देख लेने के हैं, अभी तो ये दिन थोड़े शरीर का रस देख लेने के, अभी तो ये दिन थोड़े सौंदर्य में रमने के, अभी तो गीत और नाच, अभी यहां कहां ध्यान लगाए बैठे हो, मन ये कह रहा है कि पहले संसार से तो मुक्त हो लो। बहुत लोग कच्चे ही पक जाना चाहते हैं, यही अड़चन है, कच्चे ही पकने की कोशिश की, सड़ जाओगे, पकोगे नहीं, पकने दो, इतनी घबराहट क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है, यह प्रश्न भी प्रज्ञा ने पूछा है और यहां प्रज्ञा बहुत दिन से है, युवा है अभी, लेकिन बड़ी दमित वासनाओं से भरी है, ठीक दूसरे किसी भी आश्रम में उसे धार्मिक समझा जाता, यहां सबसे ज्यादा अधार्मिक युवती वही है, दमित वासनाएं और वासनाओं के प्रति बड़ा विरोध है, दुश्मनी, सभी चीज की निंदा है, वही अड़चन हो रही। अब ये प्रश्न उसी का है, वो पूछती है कि बार बार कई तरह की वासनाओं में मन भटकने लगता है, भटकेगा नहीं तो क्या होगा, उन वासनाओं के प्रति बड़ा विरोध है, उन वासनाओं का अंगीकार नहीं, और बिना अंगीकार किए बिना स्वीकार किए उनकी समझ भी पैदा ना होगी। वासनाएं व्यर्थ है, ये सच है, लेकिन व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़नी चाहिए, मेरे कहने से व्यर्थ नहीं हो जाएंगी। संतों ने कहा होगा कुछ, उनके कहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, उन्होंने जान के कहा है, पलटूदास पलटे जब उन्होंने जान लिया होगा, और प्रज्ञा पलटना चाहती भी नहीं जाने, पलटूदास पलटे संसार के अनुभव से, देख लिया आसार, कानों से नहीं सुना, आंखों से देख लिया आसार, अनुभव से देख लिया, कुछ सार नहीं। जिस दिन ये पकान आ गई, ये परिपक्वता आ गई, उस दिन लौट पड़े, फिर लौट के नहीं देखा, फिर क्या लौट के देखना था, वहां कुछ था ही नहीं, लौट के क्या देखना। प्रज्ञा भी पलटू बनना चाहती, मगर मन में अभी संसार में सार है, और जितना दबाओगे मन को उतना ही सार मालूम होगा, दमन से कोई कभी मुक्त नहीं होता, सिर्फ अनुभव से लोग मुक्त होते हैं। तो ये दमित भाषा छोड़ो, ये धार्मिकपन छोड़ो, ये सुनी सुनाई बातों और बकवास से मुक्त बनो। वो जो मन कह रहा है उसकी भी सुनो, वो मन भी परमात्मा का है। वो मन यही कह रहा है कि अभी इन सीढ़ियों को पार करो। हाँ, उन्हीं सीढ़ियों पर अटके मत रह जाना, ये सच है। दुनिया में दो तरह के ना समझ, एक सीढ़ियों पर डर के कारण चढ़ते ही नहीं तो वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे मंदिर तक कैसे पहुंचोगे। दूसरे सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं तो सीढ़ियां छोड़ते ही नहीं, उन्हीं पर बैठे रह जाते, वो भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। सीढ़ियां ही पकड़ लोगे तो मंदिर तक कैसे पहुंचोगे। सीढ़ियां चढ़ो भी, सीढ़ियां छोड़ो भी, एक दिन पकड़ो एक दिन छोड़ो, ये जीवन का संतुलन है। जीवन में सब जानने जैसा है, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो जानो मत, और जानने में मुक्ति छिपी है। तो प्रज्ञा से मैं ये कहना चाहूंगा कि तेरी वृत्ति बड़ी दमित है, तू पुराने ढर्रे की धार्मिक, रुग्ण ढर्रे की धार्मिक है। तू यहां आ गई, मेरी बातें तुझे प्रीतिकर लगती हैं, मगर तेरे मन का संयंत्र, तेरे मन का जो ढांचा है वो बहुत ही जड़ सिद्धांतों से बना है। तू पूरे पक्षपात से भरी, पहले से तेरे ख्याल में भरा हुआ, हर चीज की निंदा है, हर चीज गलत, संसार में पाप ही पाप है, तो संसार से बच के निकल जाना है। और अभी उम्र तेरी कुछ भी नहीं, कम उम्र में भी लोग बच के निकल जा सकते हैं, लेकिन बच के नहीं निकल सकते, अनुभव से करके निकल सकते। कम उम्र में भी निकल सकते, अगर अनुभव बहुत बोधपूर्वक हो तो एक अनुभव काफी होता है एक चीज से मुक्त हो जाने के लिए। एक बार क्रोध कर लिया, और अगर व्यक्ति में समझ हो पूरी तो एक ही क्रोध पर्याप्त है, फिर दोबारा क्रोध ना करेगा। फिर दोबारा क्या करना, वही वही क्या करना, देख लिया जान लिया कुछ पाया नहीं, बात खत्म हो गई। मूढ़ आदमी पुनरुक्ति करता है, समझदार एक ही अनुभव से मुक्त हो जाता, लेकिन इतना समझदार कोई भी कभी नहीं हुआ है कि बिना अनुभव के मुक्त हो जाए, इसे तू ख्याल में रख लेना। एक अनुभव से मुक्त हो जाए ऐसे समझदार लोग हुए, बहुत अनुभव से भी मुक्त ना हो पाए ऐसे मूढ़ बहुत है। उन्हीं को पलटू गमार कह रहे हैं, अजहू चेत गमार। पलटू ये नहीं कह रहे हैं कि पहले दिन ही चेत जाओ, पलटू कह रहे हैं अब तो चेतो, इतने अनुभव के बाद अब तो चेतो। मगर अगर अनुभव ही ना हुआ हो तो इतना बुद्धिमान कोई भी नहीं है कि चेत जाए, कम से कम एक अनुभव तो अनिवार्य है। असार को जानने के लिए भी असार का अनुभव अनिवार्य है। तो मन से दमन की धारणाएं छोड़ो, मन को सहज और सरल बनाओ, नहीं तो ये विरोधाभास घटता है। यहां जो लोग मेरे पास हैं उनमें जो सर्वाधिक गतिमान हो रहे हैं वे ही लोग हैं जिनके मन में कोई दमित धारणाएं नहीं, जिनके मन में पाप का कोई ख्याल ही नहीं कि ये पाप ये पाप ये पाप, ऐसा किया तो पाप हो गया, और अपराध भाव, जिनके मन में कोई पाप की धारणा नहीं, जो बड़ी सरल चित्तता से जीवन के अनुभव में उतरने को राजी, बिना किसी पूर्व धारणा के पूर्व ग्रह के, उनकी मुक्ति निकट, वे बढ़ रहे हैं। और जो बहुत धारणाओं से भरे हुए हैं कि ऐसा किया तो गलत वैसा किया तो गलत, पहले से मान के बैठे हैं, जानते हैं नहीं क्या गलत क्या सही, मगर धारणाएं मजबूत पकड़े बैठे, ऐसे जिद्दी और हठी और दमित लोगों की मेरे पास कोई विकास की संभावना नहीं है। तुम्हारे जीवन में यहां क्रांति घट सकती है, मगर एक शर्त तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी, वो शर्त है अपने कचरा सिद्धांतों को एक तरफ रखो, नहीं तो वही कचरा सिद्धांत तुम्हारे सिर को खाते रहेंगे। ध्यान करोगे और वासनाएं उठेंगी, इतना ही वासनाएं कह रहे हैं कि पहले हमें पूरा तो करो। वो अपनी मांग मांग रही, वो कहती पहले हमारा भी देना तो चुकाओ, हमारा ऋण तो पूरा करो, ऋण पूरा करके फिर चले जाना ठीक, ऋण भी नहीं चुकाए। और ख्याल रखना, जो व्यक्ति वासनाओं से गुजर के वासनाओं से मुक्त होता है उसके जीवन में एक समृद्धि होती, और जो व्यक्ति वासनाओं से किसी तरह से बच के निकलना चाहता है उसके जीवन में एक दीनता होती, डर होता। डर तो रहेगा ही फिर, क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहेगा कि फिर कोई वासना ना पकड़ ले। बुद्ध को ज्योतिषियों ने, बुद्ध के पिता को कहा था जन्म पर कि ये व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट। बुद्ध के पिता डर गए और उन्होंने कहा कि कुछ रास्ता बताओ कि सन्यासी ना हो पाए। पंडित थे, पुराने ढर्रे के पंडित रहे होंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो कि इसको मृत्यु का कोई अनुभव ना हो और इसके लिए जितनी सुंदरतम स्त्रियां मिल सके इसके पास इकट्ठी कर दो। बचपन से इसको राग रंग में पलने दो, इसको बिल्कुल सुख वैभव में पलने दो, इसको दुख होने ही मत दो, इसको पता ही मत चलने दो कि जीवन में दुख होता है, मौत होती है, कि कोई आदमी बूढ़ा होता। यहां तक उन्होंने कहा कि इसके बगीचे में कोई फूल कुमलाए नहीं, तो ये सोचेगा कि फूल कुमला गया क्यों, और कहीं उसी से संन्यास का भाव पैदा हो जाए। कोई पत्ता सूखा हुआ इसके बगीचे में ना बचे, इसको छिपा के रखो, इसके लिए सुंदरतम महल बनवाओ। तो पिता ने वैसा ही किया, सुंदर महल बनवाए, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए, सारे राज्य की सुंदर युवतियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध बचपन से ही बड़े सुख में पाले गए और वही सन्यास का कारण हो गया। उसी कारण सन्यास्त हुए, नहीं तो नहीं होते। अगर साधारण जीवन में गुजरे होते तो शायद न हो पाते, शायद और दो चार जन्म लगते। मगर इतना घना सुख मिला और सुख न मिला, सुंदरतम स्त्रियां मिली और कुछ सौंदर्य का अनुभव न हुआ, जल्दी ही उब गए, वासना से गुजर गए, तेजी से गुजर गए, कुछ और रहा न वासना में, सब देख लिया, देखने योग्य सब देख लिया, कुछ पाया नहीं, सब सुख वैभव देख लिए, जल्दी ही जवान ही थे। तभी वैराग्य का उदय हुआ, तभी घर छोड़कर जंगल चले गए। अगर बुद्ध के पिता ने उन पंडितों से फिर पूछा होगा कि कहां भूल चूक हो गई, तो उन्होंने बताया होगा कि आप पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए, ये रास्ते पे निकलता था इसने एक बीमार आदमी देख लिया, ऐसी कहानी है ही, रास्ते पे निकलता था इसने एक मुर्दे की लाश देख ली, ये नहीं होना था। इससे इसके मन में प्रश्न उठने लगे कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे ये चला गया, आप पूरा इंतजाम नहीं कर पाए जैसा हमने कहा था। और मेरा मानना है कि उनके इंतजाम के कारण ही बुद्ध गए। इसीलिए जीवन के सारे अनुभव से गुजर जाना मुक्ति का उपाय है। बुद्ध के बुद्धत्व में उन पंडितों का बड़ा हाथ रहा, अनजाने। बुद्ध के पिता का बड़ा हाथ रहा, अनजाने। उन्होंने तो कुछ और चाहा था, कुछ हो गया। सब देख लिया बुद्ध ने जो संसार दे सकता था, जल्दी ही देख लिया। 25 साल के हुए थे तभी सब सुख भोग देख लिए। जो आदमी 75 तक भी सोचता ही रहता है, वो 25 में देख ही लिए, वो खत्म ही हो गए, अब कुछ बचे नहीं। 25 में वृद्ध वहां हो गए बुद्ध, उतने वृद्ध जितना आदमी 75 में होता। हिंदू कहते हैं 75 साल में आदमी को सन्यासी होना चाहिए, बुद्ध 25 साल में सन्यासी हो गए। क्योंकि साधारण जिंदगी में सुख इतने ज्यादा थोड़ी मिलते हैं, इतने इकट्ठे थोड़ी मिलते हैं, थोक थोड़ी मिलते हैं, फुटकर आते हैं, 75 साल लग जाते हैं आते आते। बुद्ध की जिंदगी में थोक आए, इकट्ठे गिर गए, 25 साल में सब पूरा हो गया। तुम मेरे आश्रम में हो तो ख्याल रखो, मैं दमन का पक्षपाती नहीं, मैं अनुभव का पक्षपाती हूं। जो वासनाएं तुम्हारे मन में बार बार उठाती हूं उन्हें पूरा ही कर लो। कुछ वासना से इतना घबराना क्या है, सीढ़ियां हैं चढ़ जाओ। हाँ, सीढ़ियों की पकड़ में मत आ जाना। सीढ़ियां किसको पकड़ती, तुम मत पकड़ना सीढ़ियों को। बस सीढ़ियों ने किसी को कभी पकड़ा हो ऐसा मैंने सुना नहीं, तो सीढ़ियों से क्या घबराना, रख लो पैर, चढ़ जाओ, गुजर जाओ, मंदिर में पहुंच जाओगे। वासना कि सीढ़ियों से चढ़ के ही कोई प्रार्थना तक पहुंचता है और विचार की सीढ़ियों से चढ़ के ही कोई निर्विचार तक पहुंचता है और संसार परमात्मा तक जाने का आयोजन चुनौती है। छोड़ो विरोध, छोड़ो दमन, छोड़ो नकार। पूछा है प्रज्ञा ने, आप और सभी संत यही कहते हैं, और सभी संतों का मुझे पता नहीं क्योंकि तुम्हारे सभी संतों में बहुत तो संत हैं ही नहीं, तुम्हारे 100 संतों में एकाध संत होता है, 99 तो तुम जैसे ही रुग्ण और तुमसे भी ज्यादा महारुग्ण होते हैं। मगर उन 99 की भाषा तुम्हें समझ में आती है क्योंकि वो तुम्हारे ही रोग की भाषा बोलते हैं और वो जो एक है उसकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती। उन्हीं थोड़े से एक एक संतों को चुनकर मैं बोल रहा हूं उनके ऊपर ताकि तुम्हें छांट के बता दूं कि कितने संत हैं। असंत तो बहुत है इसलिए उनकी संख्या गिनाना भी ठीक नहीं, संतों पर बोलता जा रहा हूं। संत बहुत ज्यादा नहीं है, तुम्हारे सभी संत संत नहीं है और प्रज्ञा के सभी संत तो हो ही नहीं सकते। इसके तो 100 ही संत रुग्ण और विक्षिप्त होंगे। इसको तो वही लोग संत मालूम पड़ेंगे जो रुग्ण और विक्षिप्त होंगे। क्योंकि इसका चित्त, इसके सोचने का ढंग, इसकी विचार पद्धति, इसकी तर्क की श्रृंखला दमन की है, शरीर विरोधी, संसार विरोधी। आप और सभी संत यही कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाने पर व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक जाने में सरलता होती। मन से मुक्त हो जाने पर सरलता नहीं होती, मन से मुक्त हुए कि पहुंच गए, अब और क्या सरलता, अब क्या कठिनता बची। मन से मुक्त हुए कि जाना जाता है कि हम सदा से परमात्मा में ही थे, मन को पकड़ लिया था इसलिए भूल भटक हुई जा रही थी। लेकिन मन से मुक्त होना असंभव सा लगता है, असंभव रहेगा ही प्रज्ञा, जिस ढंग से तू मुक्त होना चाहती हो नहीं पाएगी। जिस ढंग से तूने मुक्त होना चाहा कोई कभी नहीं मुक्त होता, जिस ढंग से तू मुक्त होना चाहती उस तरह से लोग विक्षिप्त होते हैं, मुक्त नहीं होते। विमुक्ति का ये मार्ग नहीं, विक्षिप्तता का मार्ग है। मन से मुक्त होना असंभव है अगर अनुभव न हो, मन को अनुभव करना ही होगा, मन के दुखों से गुजरना ही होगा, मन के सुखों को जांचना ही होगा। अंततः पाया जाता है कि मन में कोई सुख नहीं, सब दुख ही दुख है, मगर ये तो अंततः पाया जाता है, ये पहली घड़ी नहीं। जिंदगी में ख्याल रखो, जिंदगी कुछ ऐसी नहीं है, कुंजी की किताब नहीं है, गणित की किताब नहीं जिसमें सामने प्रश्न लिखे होते हो, उल्टा के देखो तो पीछे उत्तर लिखे होते। तो मैं उन्हें जो भी जरूरी है, प्रश्न भी मालूम, उत्तर भी मालूम और बीच की विधि का कोई पता नहीं, अब सीढ़ी लगाने की मुश्किल हो गई। ठीक उत्तर भी बेकार है, क्या करोगे इस उत्तर का। ये उत्तर तुम्हारी ही विधि से आना चाहिए तो ही उत्तर है, उत्तर चुराए नहीं जा सकते। जिंदगी की इस पाठशाला में नकल नहीं की जा सकती। तुम्हारे सामने कोई सदगुरु भी बैठा हो तो भी तुम उसके उत्तरों से काम नहीं चला सकते, तुम्हें अपने उत्तर खोजने ही पड़ेंगे। परमात्मा तुम्हारी निजता का समादर करता है, तुम जब तक न पाओगे तब तक पाए हुए न माने जाओगे। तो ऐसे तो असंभव है अगर डर डर के चलो और मन की जो कल्पना जाल है उसका अनुभव न करो। अनुभव कर लो तो बिल्कुल सरल है, असंभव कोई बात ही छोड़ो, बिल्कुल सरल है, इससे सरल और कोई चीज नहीं। क्योंकि मन के अनुभव कभी भी कहीं भी सुख को तो लाते ही नहीं, इसलिए उलझ तो कोई सकता ही नहीं, देर अबेर बाहर निकल ही आता है आदमी। कितनी देर मृग मरीचिका में उलझोगे, अगर सपना ही है तो जागना ही पड़ेगा। कितनी ही देर सपने को देखो तृप्ति तो नहीं होगी। ऐसा समझो कि एक आदमी रात सोया, उसे भूख लगी, दिन में उपवास किया है, रात सोया भूख लगी, अब वो सपना देख रहा है कि राजमहल में निमंत्रण हुआ है, भोजन के लिए बैठा है, बड़े स्वादिष्ट भोजन बने, खूब भोजन कर रहा है, करते ही जा रहा है, लेकिन इससे भी कोई तृप्ति तो होने वाली नहीं। सुबह जब आंख खुलेगी तो पाएगा भूखा का भूखा है। ऐसे मन के सुख जब आंख खुलती है तो पाया जाता है, बस ख्याली पुलाव थे, कहीं कुछ सच्चाई न थी, उनसे न तृप्ति होती न पोषण होता है, मगर उनसे गुजरना होता है, कुछ अनिवार्य प्रक्रिया है। तीन सीढ़ियां हैं मनुष्य की, शरीर, मन, आत्मा, और तब चौथी दशा है तुरी। पलटू कहते ना कि तुरिया में चढ़ के बैठ गया हूं और तुरिया को ही बेच रहा हूं आप, वो जो चौथी अवस्था है परमात्मा। शरीर से अगर बच के निकलना चाहा तो मुश्किल हो जाएगी, मन तक ना पहुंच पाओगे, मन से अगर बच के निकलना पाया चाहा तो आत्मा तक ना पहुंच पाओगे, और अगर आत्मा से बच के निकलना चाहा तो परमात्मा तक ना पहुंच पाओगे। शरीर पर चढ़ो हिम्मत से, शरीर के मालिक बनो, शरीर से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस घोड़े पर लगाम लगाई जा सकती है, मगर डर के बैठो ही मत घोड़े पर, तो तुम इसके कभी मालिक ना बन सकोगे। शरीर पर चढ़ो, शरीर की सीढ़ी पर पैर रखो, मन की भी सीढ़ी पर पैर रखो। मन बहुत सी वासनाओं के जाल दिखाता है, उसमें चुन लो बहुत सी वासनाएं नहीं है, अगर बहुत से गौर देखोगे तो उंगलियों पर गिनी जा सके ऐसी वासनाएं, कितनी बहुत सी वासनाएं। क्योंकि दमन करते हो इसलिए एक ही वासना हजार हजार रूपों में प्रकट होती है, अगर उसको भोगी लो समाप्त हो जाती। मन से चढ़ो तो आत्मा मिलती। कुछ लोग शरीर में ही अटक गए, उनकी सारी जीवनचर्या बस शरीर में ही अटकी। इनमें से कई लोग धार्मिक समझे जाते, अटके हैं शरीर में, उपवास करना, स्नान करना, जनेऊ और ये और वो, और सब शरीर का ही गोरख धंधा है, गंगा जाएंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे, मगर शरीर से पार नहीं है। शूद्र छू देगा तो स्नान करना पड़ेगा, शरीर की ही बुद्धि है, जैसे शरीर ही सब कुछ है। खूब घिस घिस के शरीर धोते रहेंगे, मगर इससे कुछ भीतर की स्वच्छता नहीं आती। अपना भोजन खुद ही बना के करेंगे, क्योंकि दूसरे के छुए भोजन में कहीं कुछ अशुद्धि हो जाए, मगर भोजन शरीर में जाता है, शरीर के पार नहीं जाता। कुछ लोग हैं जो मन में उलझे, उनकी झंझट यही कि वासना से कैसे छूटें, विचार से कैसे छूटें, वृत्ति से कैसे छूटें, क्योंकि पतंजलि तो कह गए चित्त वृत्ति निरोध तो ही योग होगा, तो ये चित्त वृत्ति का निरोध कैसे हो। वो वहीं उलझे हैं, वो रुग्ण होते जाते हैं, विक्षिप्त होते जाते हैं, पगलाते जाते हैं। किसी तरह बाहर तो संयम बांध बूंद के खड़ा कर लेते, लेकिन भीतर आग जलती असंयम की। कुछ लोग वहां से भी पार हो जाते हैं तो आत्मा में अटक जाते, तो मैं भाव में अटक जाते, अत्ता में अटक जाते, अहंकार में अटक जाते। उससे भी जो पार होता है वो परमात्मा में पहुंचता है। ये तीनों सीढ़ियां हैं जीवन की, इनके पार होना है। इन तीनों सीढ़ियों के पार प्रभु का मंदिर है, मगर अनुभव से ही पार हो सकता है कोई, चढ़ के ही, गुजर के ही पार हो सकता है कोई। भय मत करो, जीवन का भय मत करो, जीवन शुभ है, जीवन के सब रूप शुभ है। इन सभी रूपों में सजग भाव से गुजरो। अब प्रज्ञा कहती है कि बार बार वासनाएं उठती और बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है कि फिर मन कल्पनाओं में बहने लगता है। ये जो बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है, ये जबरदस्ती लाया गया होश है, ये दो कौड़ी का, इसका कोई मूल्य नहीं। होश अनुभव से आना चाहिए, होश सहज होना चाहिए। कबीर कहते हैं सहज समाधि भली, चेष्टा कर करके किसी तरह लाए तो वो क्षण भर ही टिकेगा, वो ऐसे ही होगा जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि फला आदमी को प्रेम करो और तुम चेष्टा करके कर भी लो प्रेम, तो कितनी देर टिकने वाला है, जरा भूले कि फिर प्रेम होगा तो टिकेगा, चेष्टा करने से कैसे आएगा। ऐसे ही प्रेम भी नहीं आता चेष्टा से, ऐसे ही ध्यान भी नहीं आता चेष्टा से। और ये चेष्टा भी भय के कारण चल रही कि कहीं वासना ना आ जाए, तो चेष्टा करके सावधानी रखो, तो लड़ाई चल रही भीतर, वासना और ध्यान में लड़ाई चल रही। वासना और ध्यान में अगर लड़ाई करवाओगे तो वासना जीतेगी, ध्यान नहीं जीत पाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई फूल और पत्थर में लड़ाई करवाए तो पत्थर जीतेगा, फूल नहीं जीत सकता। हालांकि फूल ऊंची अवस्था है और पत्थर नीची अवस्था है, लेकिन ये ख्याल रखना कि जब भी तुम नीचाई ऊंचाई में, नीचाई जीतेगी ऊंचाई नहीं जीतेगी, क्योंकि ऊंचाई कोमल होती फूल जैसी होती। जीवन में क्षुद्रताओं से विराटताओं को मत लड़वाना, लठले के सितार से मत जूझ जाना, नहीं तो लठ जीतेगा सितार हार जाएगा। और इसका यह मतलब नहीं है कि सितार कमजोर है, इसका इतना ही मतलब है सितार श्रेष्ठ है, ऊंचा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म के सामने स्थूल को मत लड़ाना, और यही लोग कर रहे हैं, स्थूल को लड़ा रहे हैं सूक्ष्म से, ध्यान को लड़ा रहे वासना से, वासना पत्थर जैसी, ध्यान फूल जैसा। इसमें बार बार ध्यान ही हारेगा। इसे खूब परमात्मा को लड़के पाया ही नहीं जाता, ध्यान भी लड़के नहीं पाया जाता समझ पूर्वक। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि जब वासना उठे तो चेष्टा करके ध्यान मत लगाओ, जब वासना उठे तो वासना को समझो, क्या वासना का संदेश है, क्या तुम्हारा मन तुमसे कहना चाहता है, क्या मन तुम्हें बताना चाहता है, कहां ले जाना चाहता है, सुनो इसकी। तुम्हारा मन है, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये फरियाद भी करे तो कहां करे, आखिर इसकी भी इच्छाएं, ये तुमसे ना कहेगा तो किससे कहेगा। इसे प्यास लगी है और तुम अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसे भूख लगी है पर मिलता है फिर भी प्रेम से इसको रस आता या नहीं। जब धीरे धीरे तुम्हें एक बात पक जाएगी कि कितना ही दो इसको रस नहीं आता, तो देने से कुछ हल होने वाला नहीं। मगर ख्याल रखना, जल्दी मत करना, ये पकने देना तुम्हारे ही भीतर, मेरी कही बात नहीं, कानों सुनी सो झूठ सब। जिस दिन तुम्हारे भीतर ही ये अनुभव का स्वर बजेगा कि ये मन तो अतृप्त ही रहेगा, अतृप्ति इसका स्वभाव है, दुष्पूर है वासना, ये पूरी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा, ख्याल रखना फिर दोहराता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा, उसी दिन तुम पाओगे मन गया, और तब एक अखंड